نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 22 پارے کا تیسرا رب دیکھیں گے سورۃ سبا کی آیت نمبر 31 سے. سورۃ سبا آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. ہٹ دھرمی دیکھیے اور ڈٹھائی دیکھیے. یہ ایک تو ہوتا ہے عمل سے دہرانا, لیکن یہاں کہنے کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب لوگوں کی جرت بڑھ جاتی ہے مخالفت کرتے کرتے, وہ اس حد تک مخالفت کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس وقت پھر وہ زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. جیسے آج فی زمانہ کچھ مسلمان بھی اسی قسم کی باتیں قرآن اور سنت کے بارے میں کرتے ہیں. کیا علاج ایسے لوگوں کا؟ ان کو قیامت جا دلا دو کہ ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. اے کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آج کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں لیڈروں, سرداروں, پیروں, حاکموں اور ماڈلز اور گلوکاروں اور اداکاروں کے پیچھے آنکھیں بند کیے چلے جاتے ہیں. کسی نصیحت کرنے والے کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن کل جب یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ان کے بڑوں کے ساتھ آج کیا ہوا جن کو یہ بڑا بنا رکھے تھے, اور آج ہم ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے کہاں چلے, تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ پہ ملامت کرتے انی کنت من الظالمین کہنے کی بجائے پھر ان بزرگوں پر اور ان بڑوں پر چیخیں گے اور کہیں گے تم نے ہمیں تباہ کیا. تو آپ دیکھیے کہ کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا کہ آپ اس کے پیچھے چلیں. کرنے والے جب خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو لہٰذا اب وہ بڑے خاموش نہیں رہیں گے, بلکہ جواب کیا دیں گے؟ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے, کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں, بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے, نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے, اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بھی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے ان کے اعمال تھے ویسی ہی وہ جزا پائیں؟ اگر یہ آیتیں ہم ترجمے کی وضاحت کے ساتھ ہلکا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے لکھ کر اگر اس کو عام کر دیں, کتنے لوگوں کی آنکھیں جو بند ہیں آج وہ کھل جائیں. آپ دیکھیے کہ عامت الناس جو ہوتی ہے یہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل رہی ہے. اس سے بھی زیادہ کوئی آیتیں ہوں گی جو قیامت کے دن کے مناظر کو کھولیں, کہ جس میں بڑے بننے والے اور بڑے بنانے والے جو لوگ ہیں خود کو اور دوسرے ایک دوسرے کو, کیا وہ لوگ وہاں ایک دوسرے کے کچھ کام آئیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے. اس لیے ہمیں کسی کی تو فکر کم, اپنی فکر زیادہ ہو جانی چاہیے کہ کہیں ہم جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ہم جو طرز زندگی گزار رہے ہیں, یا ہم یہاں آ کے جو سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے ہیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کہیں ہمیں کسی خوش فہمیوں میں تو نہیں مبتلا کیا جا رہا, یا صرف ہمیں کسی خواہش کے حصول کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا رہا. تو ہمیشہ یاد رکھے کسی کے پیچھے چلتے ہوئے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا اچھا لگتا ہے کہ تم آؤ ہم تمہاری ساری باتیں لیتے ہیں, تم نذرانے دو, چندے دو, ہم تمہیں بخشوا لیں گے, ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے اور ہر یہ کام کریں گے. ایک بچی ہے نعت پڑھ رہی تھی, وہ بچی کو زبانی نعت اس طرح یاد تھی کہ جیسے اللہ ہی حافظوں کو قرآن یاد ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ نے لکھا نہیں؟ وہ کہہ رہی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر میں نے کہا آپ سنائیے. جب سنانے لگی ایک دو شعر تو ٹھیک لگا, اس کے بعد وہ کہنے لگی سارے جہاں کے مشکل کشا آ گئے آ گئے آ گئے سارے جہاں کے مشکل کشا آ گئے. اب میں سوچ میں پڑ گئی میں اس بچی کو کیا بتاؤں. خیر میں نے صبر کر کے سنا, آگے بولتی رہی اور یہ جملہ بار بار بیچ میں آ رہا تھا. پھر میں نے اب سوچا کہ میں اس بچی کو اگر یہ کہہ دوں گی کہ نعت نہ پڑھو تو یہ چھوٹی سی بچی ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی میری بات. تو میں نے اس کو پیار سے کہا کہ بیٹا باقی بات ٹھیک تھی لیکن یہ ایک شعر آپ کو پتہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا تھوڑا اس نے اپنا دماغ لگایا, میں نے تھوڑی سی بات بتائی. یقین کر اس نے وہی بات کہی جو بڑے کہتے ہیں. نہیں وہ بھی تو پھر اللہ سے لے کے دیتے ہیں نا, یہ اللہ کے ہم نبی کو تو نہیں کہہ رہے. ایسی بات اس نے کی.
खैर फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा आप ये लिख के लाइएगा तो मैं आपको फिर बताऊंगी। फिर वो बच्ची जब प्रैक्टिस के लिए दोबारा आई तो अब उसने वो शेर नहीं पढ़ा खुद ही ना, शुरू के पढ़ के सुनाया और बिल्कुल दो चार शेर पढ़ के बस चली गई कि ये मेरा इतना ही है ना। कहती मुझे पता है वो मैंने नहीं पढ़ना मुश्किल कुशा वाला ना। तो मैं सोची इतनी प्यारी बच्ची है वो, मासूम भोली मीठी बच्ची है, लेकिन अगर एक सोच बना दी जाएगी और जिस बंदे को ये हो, फिर उसके कहने पे कहने मैंने कहा कि मुझे ये लिखी हुई दिखाओ, कह रही आप यूट्यूब पे जाके ठंडी ठंडी हवा लिखें तो ये आ जाएगी। मैंने उसके कहने पे की, वल्लाही जब मैंने उस बच्ची ने तो वो एक दफा जुमला बोला था और थोड़ी सी पांच छह शेर थे, जब मैंने उसको सुना जाके तो वो कोई किसी टीवी चैनल से बोलने वालों में से थी कोई खातून, और उन्होंने उस जुमले के साथ कई और जुमले और ट्यून के साथ मेकअप के साथ धुन के साथ उन्होंने वो नज़म पढ़ी हुई, और मुझे लगा कि ये टीवी पे आई होगी तभी तो इनको ये पता चला है ना। तो किस्सा मुख्तसर बात का ये है कि जब आपको जो ये बात का यकीन दिला दिया जाए जो मर्जी करते रहो अल्लाह के नबी तुम्हें बचा लेंगे, तो फिर काम करने की हमें क्या जरूरत है। फिर मैं तो कुछ नहीं करूँ, कौन हम में से सर्दी में आके बैठे जब घर बैठ के आपको सारी चीजें मिल रही हैं। तो लोगों को हमेशा वो दीन बहुत आसान लगता है, अच्छा लगता है, जिसमें लोग के हाँ खूब नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, वजीफे करो, ये नजराने दो और जिंदगी। हाँ भाई शादियां तो फिर बच्चों की अब ऐसे ही होती हैं, इस पे तो मजबूर है और घरों पे भी, और ये है। तो अपनी ख्वाहिशों को दीन बनाने वाले लोग कल क्यामत के दिन परेशान होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भोल पने में और इस तरह की बातों में पीछे लगे हुए हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हमें सबसे ज्यादा, दूसरों को हमसे ज्यादा हिदायत दे, क्यामत के झगड़ों से बचाए। जिसके बाद फरमाया, वमार सलनाफी करियत मिनसीफूखा, कभी ऐसा ना हुआ कि हमने किसी बस्ती में खबरदार करने वाला भेजा हो और इस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये ना कहा हो कि जो पैगाम तुम लेकर आए हो इसको हम नहीं मानते। हाईलाइट कर ले, नबियों को मानते थे, नबियों के पैगाम को नहीं मानते थे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल और औलाद रखते हैं और हम हरगिज सजा पाने वाले नहीं। क्या ये जुमले हैं? आप सोच सकते हैं तकब्बुर में भरे हुए इंसान के अलावा किसकी जुबान से ये जुमले होंगे, क्योंकि सच्ची दावत देने वालों का लाइफस्टाइल हमेशा आम पब्लिक से कम ही होता है। उनको शौक भी नहीं होता, जरूरत भी नहीं होता, और वो उस माल को जाया नहीं करना चाहते अपनी जात पर जो किसी और अच्छे काम पे लग सकता है। तो इस चीज को देखकर लोग तकाबुल में आ जाते थे कि देखो देखो तुम कैसे और हम कैसे। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी बातें करने वाले जो मुतरफीन है इनको एक आखिर में जो गलत फहमी हो जाती है वो ये होती है कि हमें सजा नहीं होगी, हम इतने अल्लाह के प्यारे, हम इतने भोले, देखो हम कितने प्यारे लग रहे हैं इस वक्त तैयार होके आए हैं, क्या इस भोली सूरत को जिसको इतने प्यार से सजवाया, इतने पैसे दे के, क्या भला अल्लाह आग में डाल देगा। लो देखो शादी का मौका है, अगर इस बच्ची ने थोड़ी सी आराइश करके कुछ मर्दों को दिखा भी दिया अपना, तो क्या ख्याल है इतनी प्यारी शक्ल को लाग में डालेगा। ये गुमान होने लगता है कि जब हम दुनिया वालों को प्यारे लग रहे हैं और दुनिया वाले भी जब दिल खोल के और मुंह भर भर के तारीफें करते हैं, तो बस फिर ये गलत फहमी हो जाती है कि जैसे आज हम लोगों को अच्छे लग रहे हैं वैसे हम अल्लाह को भी अच्छे लगेंगे। ए नबी इनसे कहो, मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपत उलक अता करता है, मगर अक्सर लोग इसकी हकीकत को नहीं जानते। ये किस चीज का जवाब है? ये जो ऊपर बात की कि हम तुमसे माल में ज्यादा है, कि भाई तुम क्या सोचते हो कि अगर हमारे पास माल कम है तो क्या ये अल्लाह की नाराजगी की बात है? नहीं। और रह गई बात तुम्हारी दौलत पे तुम्हारा फलना फूलना और तुम्हारा उस पर अकड़ना, तो ये तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे करीब करती हो। हाँ मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे यही लोग हैं जिनके लिए इनके अमल की दोहरी जजा है, वो बुलंदो वाले इमारतों में इत्मीनान से रहेंगे। रहे वो लोग जो हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं तो वो अजाब में मुबतला होंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह की आयतों को फैलाने के लिए दौड़ धूप करें, ना कि हम आयतों के मुखालिफ बातें करने के लिए इस तरह से करने लगे कि हम अपनी बातों को बढ़ाते हुए अल्लाह के दीन को बिल्कुल पीछे कर दें। और मैंने तो आजकल यही देखा है कि लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल एक ऐसा ही किरदार बना लिया है कि जो करना है करते जाओ और देखना अल्लाह के नबी जो है वो आएंगे और वो हमारी बात मानेंगे। और ये कैसे हो सकता है कि हम नबी की मोहब्बत में ये बातें करें और उसके बाद अल्लाह के नबी हमें यानी बचाए ना। तो असल बात यह कि हमने लोगों को लोरियां दी होती हैं, यही लफ्ज है ना कि इल्ला बिल्लती तुकर रिबो को मिंदा ना जुल्फा। आज यही असूल लेके बैठे हुए हैं कि नबी का कुर्ब मिल जाएगा इन बातों से, अल्लाह करेगा मिलेगा, अल्लाह का नबी सिफारिश भी करे हमारी सब कुछ करे। अब बात लंबी होती जाती है ना, खवातीन जो है वो सलाम पढ़ती हैं और उनका ख्याल था कि नबी सल्लम आएंगे। बाद में जब दर्स मेरा हुआ तो मैंने यही मौजू ले लिया, मैंने कहा अभी आप सिस्टर यही सोच रही थी ना कि नबी सल्लम आएंगे जी, तो मैंने कहा आए चले बैठते हैं, अगर वो वाकई आ जाए तो क्या होगा। अब तो फिर जाहिर रोने लग गई कई बातें जब मैंने थोड़ी सी बातें की कि अगर वाकई अल्लाह के नबी आ जाएं, ओसलों में आ जाएं, क्या होगा। ये थोड़ी सी मैंने उनको मंजर कशी कराई तो वो औरतें बैठी छमछम रो रही थी अंदर, कि ये तो हम सोचते भी नहीं जब नबी को बुलाते हैं कि वाकई नबी आ जाए तो वो हमारी कितनी चीजों पे एतराज करेंगे। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में वो सही समझ दे दे कि जो हमें अमल पे माइल कर ले, वरना अल्लाह ना करे कि अजाब में वहां पेश किया जाना पड़े। कुल इन रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, ए नबी इनसे कहो मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है। जो कुछ तुम खर्च कर देते हो इसकी जगह वही तुमको और देता है और वो सब राजिकों से बेहतर राजिक है। और जिस दिन वो तमाम लोगों को जमा करेगा फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे। अब देखिए पेशी दोनों की हो रही है, पूजने वालों की या चलने वालों की हो रही है, तो जिनके पीछे चले उनकी भी पूछी होगी। और यहाँ देखिए तकरार के साथ यही मौजू आ रहा है, एक तो रिस्क की बांट का मौजू बार बार आ रहा है और एक किसी के पीछे चलने का आ रहा है। और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि हर दौर के मुशरिकीन जो है कभी देवियों को, कभी फरिश्तों को बुत बनाकर, कभी किसी बारिश का देवता, कोई बिजली का देवता, कोई हवा का, कोई दौलत का, कोई मौत का, कोई जिंदगी का, कोई शादी का, क्यामत के दिन अल्लाह ताला इनको किस तरह पूछेगा ये अल्लाह को पता है। हो सकता है अल्लाह इनमें जान डाल के पूछ ले, लेकिन या इनको रुस्वा करने के लिए पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे। कालू सुबहान का अंत वली मिन दूनिहिम, वो जवाब देंगे पाक है तू, पाक है आपकी जात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना कि इन लोगों से। दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत किया करते थे। इससे पता चलता है कि हर बुत के साथ एक जिन होता है, हर बुत के साथ एक शैतान होता है। क्यों? कि वो लोगों को उनकी इबादत की तरफ माइल करता है। दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे, इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। इस वक्त हम कहेंगे कि आज तुम में से कोई ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, और जालिमों से हम कह देंगे अब चखो इस अजाब जहन्नुम का मजा जिसे तुम जुटलाया करते थे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, कौन थे ये लोग। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला रजुलुन युरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा काना याबुदु आबाउकुम, इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती थी तो ये कहते हैं कि ये शख्स तो बस ये चाहता है कि तुमको इन माबूदों से बदगुमान कर दे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं, और कहते हैं कि ये कुरान महज एक झूठ है घड़ा हुआ। इन काफिरों के सामने जब हक आया तो इन्होंने कह दिया कि ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है, हालांकि ना हमने इन लोगों को पहले कोई किताब दी थी कि इसको पढ़ते और न तुमसे पहले इसकी तरफ कोई आगाह करने वाला भेजा था। इनसे पहले गुजरे हुए लोग छुटला चुके, जो कुछ हमने इनको दिया था उसके दूसरे अशीर को भी ये नहीं पहुंचे, यानी दसवां हिस्सा भी इनको नहीं मिला उस दौलत का और उस माल का जो कारून और शद्दाद और नमरूद और बड़े बड़े लीडर्स को दिया गया। मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो देखो कैसी थी मेरी सख्त सजा। अब देखिए कि दोबारा अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के ऊपर यही इल्जाम रखा कि इनको बाप दादा का तौर तरीका बदलना बहुत मुश्किल लगता है, और 10 नमाजें पढ़नी आसान है, 10 रोजे रखने आसान होंगे, 100 रुपया सदके में देना आसान होगा, हज और उमरे पे बार बार जाना आसान है, लेकिन बाप दादा का एक तरीका छोड़ना, चाहे वो रस्म के नाम पे हो, चाहे वो इबादत के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी मन घड़त तरीके के दीन के किसी फेल के नाम पे, वो मुश्किल होता है। इस पे लोगों को इतराज होता है। आज अगर आप अपनी जगह के बाहर साइन लगा देना कि वजीफे दम दरूद पढ़ना पढ़ाना, कोई अमलों पे जद नहीं, जो चाहो करो जहां चाहो रहो, तो आप देखिए कि आपके इस पूरे स्कूल में खड़े होने की जगह ना हो। ये वो बात होती है जो लोग जुबान से नहीं मानेंगे लेकिन अमल इस बात का कि क्या फायदा अपने आप को बोझ में रखने का, जो सब कर रहे हैं तुम भी आंखें चुराते जाओ और वो काम करते रहो। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं साफ साफ आयतें नहीं पसंद आती, यहाँ ये हाईलाइट कर लीजिए आयातुना बय्यिनातिन, साफ साफ आयतें, ये साफ साफ सुनाना ही जो है ना यही असल में मुश्किल है। यही लोगों का इतना हमल नहीं होता, लोगों के अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं होती, कितनी मीठी जुबान से आप क्यों ना सुना लें, कितने प्यार से क्यों ना सुनाएं, लेकिन उसका मजमून तो उनको मीठा नहीं लगता, इसलिए लोग फिर भिदकने लगते हैं। सूरत का इख्तिताम है, अल्लाह अपने नबी को फरमाते हैं कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, ए नबी इनसे कहो मैं बस तुम्हें एक ही बात की नसीहत करता हूँ, यानी बस एक सुन लो, जैसे हम कहते हैं ना बहुत नहीं बस एक बात सुन लो, तुम अकेले अकेले और दो दो मिलकर अपना दिमाग लड़ाओ और सोचो। सोचने का तरीका बताया, ग्रुप्स में सोचो, पेयर्स में सोचो, मिलके सोचो, क्या कि तुम्हारे साहिब में आखिर कौन सी बात है जो जुनून की हो। क्या ये जुनूनी है क्या मजनू दीवाने लोग ऐसी खूबसूरत बातें करते हैं, यहाँ साहिब से कौन मुराद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखो वो जो बातें करते हैं ये जुनून की बातें नहीं है, ये तो तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारी आंखों पे पड़ा हुआ हवस का और तकलीद का पर्दा हटेगा और वो चीजें जो तुमने अपने गलों में डाल रखी हैं तासुबात के और ख्वाहिशात के नाम पर, इसको जरा अलग करके देखो, लग पता जाएगा कि मजनू नहीं है, दीवाना ये नहीं है। और मजनू तो लोगों को लगते ही थे अल्लाह के नबी, क्योंकि सुबह भी वही काम था तो शाम को भी वही काम था, वीकेंड था, वीकडेज भी था। लोगों को ये बात भी नहीं समझ आती कि आखिर ये क्या होता है, कि जिस बंदे को ये बात समझ आ जाती है फिर वो पूरे का पूरा इसी चीज का हो जाता है। कहा इनको बता दो कैसी बातें जो हैं क्यों बंदे की मान से निकलती हैं, इसलिए कि अजाब सामने दिख रहा है। और वो क्या है कि इन हुआ इल्ला नजीरुल लकुम बैना यदै अज़ाबिन शदीद, वो तो एक सख्त अजाब की आमद से पहले तुमको आगाह करने वाला है। कभी कोई मरीज अपने डॉक्टर से इस बात पे नाराज हो जाए कि आपने मुझे क्यों ये बताया कि मुझे कैंसर है, आप पे मुकदमा कर दूंगा कि आपने मुझे ये बताया कि मेरे दिल के दो वॉल बंद है, कभी सुना आपने? वो तो पैसे दे दे के हम पूछवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, खून देते हैं अपना, इतना मशीनों में जाके बैठते हैं, कई कई घंटे भूखे रहते हैं, कि कितना कितना पानी पीते हैं, कि अल्लाह के लिए हमारे जिस्म में झांक के बता दो क्या खराबी है। तो अगर अल्लाह का नबी या अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई जो है अगर वक्त से पहले बता दे कि लोगों लग पता जाएगा तो क्या उसके साथ नाराज होने की जरूरत है? नहीं। कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, इनसे कहो अगर इस पर मैंने तुमसे कोई अजर मांगा हो तो तुम ही को मुबारक रहे, तुम खुद ले जाओ जो तुम मुझे दोगे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इन अजरी इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है और वो हर चीज पर गवाह है। इनसे कहो मेरा रब मुझ पर हक का इल्का करता है और वो तमाम पोशीदा हकीकतों का जानने वाला है। मैं पाकिस्तान में थी, हमारी गाड़ी जो थी ट्रैफिक के अंदर स्टक हुई हुई थी, बहुत रश था उधर, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मुस्तकिल था, एन हमारी गाड़ी के सामने एक रिक्शा खड़ा था और रिक्शे के जो पीछे बैक है ना उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ था, बड़ा कलरफुल सा था, तो मेरी नजर उस पर गई, मैंने तस्वीर भी खींच ली, फिर मैंने उस पर एक दिन आज की बात में क्लास में भी बात की, आपको तस्वीर सरेरा सुना रही हूँ। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, हर बीमारी हर मरज हर दुख सुख ये वो का इलाज होगा, गारंटी शर्त ये, जैसे डॉक्टर्स ने लिखा था ना, गारंटी है कि एक महीने के अंदर आप मार्फत किस दर्जे को पहुंच जाएंगे, दिस एंड दैट, करने के कामों में जो चीजें थी बहुत कुछ लिख के ना, नमाज रोजा हज हलाल की पाबंदी, तो एक तरफ बड़े से दायरे में लिखा था और नजराने और चंदे और दिस एंड दैट, और नीचे एक बुजुर्ग थे कोई यानी आदमी थे, उनकी तस्वीर बनी हुई है और साथ उनका नाम लिखा हुआ है कि इनसे मिल जाएंगे तो शर्तिया तौर पे एक महीने के अंदर अंदर आपको इतनी मार्फत मिलेगी कि यकीन इलाही आपको मिल जाएगा। दो बातें उसमें बड़ी थी कि एक नजराने और चंदे और दूसरा इस बुजुर्ग के साथ आके बैठ जाए थोड़ी देर, किसको जरूरत है इतनी -19 -20 में आके यहाँ पढ़ने और पढ़ाने की, बैठे घर में वजीफा करें, साथ हीटर चला लें, साथ आप हाथ में तस्बीह पकड़ लें, पढ़ते रहें पढ़ते रहें। लोगों को मजनू लगती हैं और ये बातें कल पता लगेंगी तो उस दिन इसकी हकीकत खुलेगी। और नबियों का बेलॉस काम करना उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। चंदा नहीं चाहिए तुमसे, डोनेशन नहीं चाहिए तुमसे, पैसे नहीं चाहिए, हमारी नजर तुम्हारी जेब पे है ही नहीं, तुम्हें कुछ मिला तो तुम्हें मुबारक है, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अगर कुछ दोगे तो अल्लाह के दीन को मिलेगा, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये है वो चीज जो बंदे की बात में असर लाती है, क्योंकि यकजिफु बिल हक, ये बात नोट कीजिए कि मेरा रब हक के ऊपर चोट लगाता है और हक निकलता है उस जुबान से जहां अपने मुफादात के जाने का डर ना हो, आपको अपनी जॉब के जाने का खतरा हो, आपको अपनी पे के कम होने का खतरा हो, आप भी उसको फिर डायल्यूटेड करके उसको एक स्मूदी बना के पेश कर देंगे, हाँ ये भी ठीक तो वो भी ठीक। फुलजाल हक वमा युब्तिल बातिल वमा युईद, कह दो कि हक आ गया और अब बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता, यानी अब उसको तो जाना पड़ेगा। कहो अगर मैं गुमराह हो गया हूँ तो मेरी गुमराही का वबाल मुझ पर है, और अगर मैं हिदायत पर हूँ तो इस वही की बिना पर हूँ जो मेरा रब मेरे ऊपर नाजिल करता है, वो सब कुछ सुनता और बहुत ही करीब है। क्या पता चल गया कि इंसान इस हद तक अपने मिशन के साथ सच्चा हो कि ये अल्लाह से भी कह दे कि अल्लाह अगर मैं गलती पे हूं ना अल्लाह ताला मेरी सलाह कर दे, और मैं हक पे हूं तो मुझे तो उस पे जमा दे। अब अगली आयत में दोबारा आप देखिए कि क्यामत के दिन की वो घबराहट कि जिस वक्त कुछ कर नहीं सकेंगे। मैं इन आयात को पढ़ती हूँ ना तो वो पंजाबी का या उर्दू का एक मुहावरा ना, क्या पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। पता नहीं क्यों जो ही आयत 51 का तर्जमा मेरे आंखों के आगे आता है मुझे यही दिखता है कि वलऊ तराइज फजी फला फौत व उखी जुमे मकान इन करीब, काश तुम देखो इन्हें उस वक्त जब ये लोग घबराए फिर रहे होंगे और कहीं बचकर न जा सकेंगे बल्कि करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे। उस वक्त ये कहेंगे, हम इस पर ईमान ले आए, हालांकि अब दूर निकली हुई चीज कहाँ हाथ आ सकती है। अब क्या फायदा, अब तो दूर चली गई वो दुनिया जिसमें अमल करने थे, जिसमें गुनाहों से बचना था। अब नहीं पलट सकते, अब तो आगे की बातें, आगे जाना है। इससे पहले ये कुफर कर चुके थे और बिला तहकीक दूर दूर की कौड़ियां लाया करते थे। इसको हाईलाइट कर लें और मैं भी अपने लिए दुआ करती हूँ, आप भी अपने लिए कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसी तफसीर और ऐसी कुरान की तावीलात से बचाएं कि हम दूर दूर की कौड़ियां लेकर आए। बाज लोग करीब की आयत और हदीस को छोड़कर अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से ऐसी ऐसी तफसीरें बयान करते हैं कि अल्लाह की पनाह, इंसान दंग रह जाता है कि इतने डंके की चोट पर ये बात कर रहा है। इन्हीं दिनों चूंकि तैयारी में हूं तो मैं बहुत सारी चीजें कुछ अल्लाह सुना देता है, कुछ सुनती हूँ। यकीन करे कि एक लोग उनको आलिम कहते हैं, वाकई इल्म बहुत है उनके पास, स्पीकर भी है। सिर्फ उनका वो एक क्लिप देखने से ये पता चल गया कि उनके गिरोह या उनकी जात पर किसी ने कोई तनकीद की है कि आप उस मसलक से हैं या उससे, दिस एंड दैट। यकीन करें उन्होंने 8-10 मिनट के क्लिप में कोई 3 से 4 बार ये बातें इस तरह मुंह पे हाथ फेर फेर के गई कि हमें कोई ये कहता है कि हमारा अकीदा ठीक नहीं तो फिर तो कोई दुनिया में अहले सुन्नत ही कोई नहीं, फिर तो कोई मुसलमान ही नहीं। और जो बात आपको सुनाने लगी हूँ, कहते हैं पिछले 9 साल से मैं रुएत में इमाम आजम का शागिर्द हूँ, यानी ख्वाब में इमाम अबू हनीफा आके मुझे पढ़ाते हैं। 9 साल मैंने उनसे तालीम हासिल की है और अल्लाह के नबी का हाथ मेरे सर पे है और मैं जिधर जाता हूँ मजमे क्यों लगते हैं, अल्लाह के नबी की नजर है मेरे ऊपर। क्या क्या बात है, तकब्बुर के भरे हुए जुमले और आंखों में खून दौड़ रहा है और थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे अंदर से उबाल उठते हैं ना, हमारे ऊपर बात करते हो, हमारे अकीदे पे बात करते हो, इस तरह की बातें और दूर की कौड़ियां ला ला के कुरान की आयतों की उन्होंने अपने लिए बातें पेश की हुई थी। यकीन करें मैं तो डर जाती हूँ वल्लाह ही, ये अब भी बता रही है ना तो मेरा दिल अंदर से उछल रहा है कि मैं भी तो थोड़ा बहुत दीन की बात करती हूँ ना, अल्लाह की मैं ऐसी ना हूं, अल्लाह मेरी मत न मारी जाए। अल्लाह इल्म तो शैतान के पास भी बहुत है, और उस वीडियो पे नीचे लोगों के कमेंट होते हैं, उसमें लोगों ने कमेंट लिखे हुए थे कि अल्लाह के बंदे इतना तकब्बुर ना कर, इल्म तो शैतान के पास भी था और तू क्यों इतना गरज रहा है। और अब मैं ही सोचूं अपनी जात का दिफा, इतना दिफा और लोगों को चैलेंज कर करके और सीने पे हाथ फेर फेर के आप दें और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे जगह से उठ के आप 4-6 लोगों को जाके थप्पड़ी मार देंगे, इतना गुस्सा आपको लगा हुआ। यानी उन्होंने साफ कहा कि 9 साल मैंने ख्वाब में इमाम आजम से इल्म हासिल किया। माजी के बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनके नाम ले लेके कह रहे थे मेरी उससे भी सनत मिलती है, मेरी उससे भी मिलती है, मैं उसका भी हूं, मैं उसका, मतलब वो अब कहाँ मिलती है जो आपसे इतने 100 साल पहले चले गए। यानी इस तरह हमारा आलमे बाला में राबता मौजूद है और मैं उनसे फैज ले रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इल्म के बाद ना बहकाए, ये बहुत बुरा होता है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह तआला कह रहे हैं दूर दूर की कौड़ियां लाया करते थे ताकि मजमे गर्म हो, ताकि लोगों पे हमारे इल्म का रोब आए। और यकीन करें आमतुन नास वाह वाह सुभान अल्लाह, इस तरह की बातें करते। एक आलिम थे सऊदीया के, तो मैं उनकी ऐसी कोई बात में सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि हमारी अवाम का हाल क्या है। और एक जगह उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मौलवी साहब दर्स दे रहे हैं या तिलावत कर रहे हैं, और आपको कहते हैं कि सूरत गाशिया की जो आयते हैं उसमें कितना रिदम है ना कि उनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और उनके पेट में ऐसा होगा। और कह रहे हैं कि मौलवी साहब जो थे वो लैब में पढ़े थे और मजमा जो आगे से कह रहा था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसका पूरा तर्जमा ये था कि वो जहन्नमी जाएंगे तोर खाएंगे। तो वो कहते हैं कि मौलवी की भी बात देखें, अल्लाह को पता है वो कौन थे या कैसे थे, जो मैंने सुना है मैं उनकी बात बता रही हूँ। तो वो कहते हैं कि जब लोगों ने उस पर मजमा कहा तो फिर चुप हुए, तो मौलवी साहब कहते एक बारी फिर कह दो, एक बारी फिर कह। और वो कहते हैं कि इस जुमले से मुझे पता चला कि मौलवी साहब भी जो ये बात कर रहे हैं शायद उनको भी शायद का तर्जमा नहीं आता। वल्लाहु आलम, सिर्फ यकीन करें रोने को दिल जाता है। मैं कहती हूँ अल्लाह कहाँ वक्त है हमारे पास कि हम अपनी जात को लेके बैठ जाएं, सजाएं, खिलाएं पिलाएं, घर बच्चों की शादियां इनके यहाँ हो जाएगा सब कुछ, ये तो हमारी एक छोटे से वजूद की जरूरत है ना। लेकिन अल्लाह के नबी के ऊपर इस वक्त जो हरबे हैं और जो इस वक्त अल्लाह के नबी का दीन, यकीन करें मुझे ऐसे लगता है कि बीच में एक शख्स खड़ा है और आप उसको चारों तरफ से तीर मार रहे हैं और छलनी हुआ है और काफिर नहीं मुसलमान ज्यादा है। हम मुसलमान अपने नबी के दीन को इतना प्यूट किए हुए इस वक्त सिर्फ अपनी चंद चीजों को चमकाने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह तला हमें माफ कर दे। अल्लाह तला कहते वक्त का फरूब ही मिन कबलू, इससे पहले ये कुफर कर चुके थे और बिला तहकीक दूर दूर की कौड़ियां लाया करते थे। उस वक्त जिस चीज की ये तमन्ना कर रहे होंगे इससे महरूम कर दिए जाएंगे। तमन्नाएं तो कुछ और थी ना, अल्लाह ने उस चीज से महरूम कर दिया। जिस तरह इनके पेश रो हम मशरब महरूम हो चुके, यानी इनसे पहले के जो लोग थे या इनके बाद में आने वाले जो लोग थे सब महरूम होंगे। इन नहुम का नफी शक मुरीब, ये बड़े गुमराह कुन शक में पड़े हुए थे। अलमला तजल नमिनहुम, तो आप देखिए कि पूरी सूरत सबा के अंदर किस तरह से शुक्र और नाशुक्री के रवैयों की बात थी। जब लोग अल्लाह के नबियों की कदर ना करें और इस तरह की बातें पेश करें तो हकीकत में उससे बड़ी फिर नाशुक्री कोई नहीं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अगली सूरत है सूरत फातिर। पहली बात इस सूरत की देखिए कि अल्लाह के नामों में से एक नाम पे ये सूरत है। अल्लाह ताला का नाम है अल फातिर, और सूरत का एक दूसरा नाम सूरतुल मलाइका भी है, फरिश्तों के नाम पे, क्योंकि इसमें फरिश्तों की एक बहुत खूबसूरत सिफत का तज़किरा है। ये सूरत मक्का के दरमियानी दौर में नाजिल हुई कि जिसमें मुखालफत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। मुखालफीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नाकाम करने के लिए हर तरह की बुरी से बुरी चाल चल रहे थे। सूरत का जो बुनियादी मजमून है वो क्या है, मक्का वालों के नाते से आज क्यामत तक के लोगों को बता दिया गया कि तौहीद की दावत के मुकाबले में जो रवैया इस वक्त तुमने इख्तियार किया हुआ है और इस पे तुम बात सुनने को तैयार नहीं हो, तो याद रखो इसका अंजाम बुरा होगा। आज तुम इस्लाम के और अल्लाह के नबी के खिलाफ जो बातें करते हो कल तुम्हें इस पर अफसोस होगा। फिर बीच में अल्लाह की तौहीद की बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिसालें तकाबुल में दी गई हैं। इस सूरत के एक और आप खूबसूरती देखेंगे, इसमें दो मुख्तलिफ चीजों का तकाबुल बहुत है। धूप और छांव का है तो अंधे और देखने वाले का है, जहां आते आएंगी आप खुद भी महसूस कर लेंगे। और इसमें अल्लाह के नबी को बार बार ये नसीहत की गई है कि आप फिक्र ना करें, बस नसीहत करते रहें और नतायज की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, आप काम करते जाएं, जो आपकी बात सुन के अल्लाह की तरफ आ जाएगा अल्लाह उसको खैर देगा और जो पीछे जाएगा अल्लाह खुद उससे निपटेगा। बहुत दिल सोजी वाली सूरत, और खास तौर पर इसकी चंद आयतें हम हाईलाइट करेंगे कि जो वाकई इंसान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुला। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला और फरिश्तों को पैगाम रसा मुकर्रर करने वाला है। किस अल्लाह के नाम से सूरत का आगाज होता है। कौन है वो फरिश्ते? ऐसे फरिश्ते जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार बाजू हैं। वो अपनी मखलूक की साख्त में जैसा चाहता है इजाफा करता है। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और शायद को हाईलाइट कीजिएगा, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादिही वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह जिस रहमत का दरवाजा भी लोगों के लिए खोल दे इसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो बंद कर दे इसे अल्लाह के बाद कोई दूसरा खोलने वाला नहीं। वो जबरदस्त और हकीम है। अगर आप तौहीद पे दर्स देना चाहें ना, इससे खूबसूरत आयत कोई नहीं है, क्योंकि ये है वो नुक्ता जहां से लोग शिर्क में जाते हैं, कभी बेटे लेने, कभी करनी वाले के पास, कभी दौलत के पास। अल्लाह कहता है जब मैं देना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता, मैं ना देना चाहूं तो कोई दे नहीं सकता। आज जितना शिर्क है उसमें से अक्सर शिर्क तो शिर्क फिर दुआ है। लोग अपनी मन्नतों मुरादों को पाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो इस आयत को याद कर लीजिए, आपका दिल खिल जाएगा, हर तरह के गम से आप आजाद हो जाएंगे कि लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा रब जाए, लोग अपने घर की छत पे खड़े होके आपके खिलाफ बातें करें ना, अल्लाह ने जिसको आपकी बात सुनानी है फिर सुना देगा। जैसे अल्लाह ने मूसा के घर में फिरौन को पलवा के अपनी कुदरत साबित कर दी थी, और जैसे अल्लाह ताला बार बार फिरौन के अकदामात के बावजूद मूसा को उनसे बचाता रहा, ये अल्लाह की शान है। बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमारा साथ ना छोड़े, फिर किसी दूसरे की परवाह नहीं है। या अय्युहन्नास उस्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, लोगों तुम पर अल्लाह के जो एहसान है उनको याद करो। ये किसको कहा हुआ है? ये कौन से लोग हैं? मक्का के मदीना जी, ये ओस्लो वाले हैं, ये हर शहर वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, कैनेडा वाले, हम सब हैं। नेमते हम पे कोई है एहसानात? क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक भी है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता हो? कोई माबूद इसके सिवा नहीं। आखिर तुम कहां से धोखा खा रहे हो? अब अगर ए नबी ये लोग तुम्हें छुटलाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं, तुमसे पहले भी बहुत से रसूल छुटलाए जा चुके हैं और सारे मामले आखिरकार अल्लाह ही की तरफ रुजू होने वाले हैं। तसल्ली मिलती है जुटलाए जाने के बाद। اس صورت میں یا ایوہ الناس کا لفظ بہت دفعہ پڑھیں گے، جیسے صورت مائدہ میں یا ایوہ الذین آمنو کا لفظ ہے، اسی طرح اس صورت میں، اور اسی طرح آپ کو ایک اور صورت یاد آئی جس میں یہ لفظ بہت آیا تھا، صورت یونس میں. سوچا کریں، غور کیا کریں، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا وعدہ اللہ کا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى اور شَرٍ يَرَى. پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دینے پائے. کون ہے یہ؟ الغرور کس کا نام ہے؟ شیطان کا نام ہے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. سمجھتے ہم؟ ہمیں تو بڑا سویٹ لگتا ہے. وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ اس کو وہاں اکیل پن کا خیال نہ آئے کہ میں اکیلا جہنم میں جل رہا ہوں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. افمن زین لہ سوء عملہ، بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں اور دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کر تو برا کام رہی ہوں لیکن مجھے دیکھنے وہ کام بہت خوبصورت لگ رہا ہو. یہ ہے وہ موڑ جہاں سے بعض دفعہ پھر انسان پھسل جاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہم کر کیا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے. پس اے نبی، خوامخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. ہائی لائٹ کریں گے اس کو. فلا تصخب نفسک علیہم حسرات، دو اور مقامات یاد آ رہے ہیں اس کے ساتھ اسی مضمون کے. آپ میں سے کسی کو کوئی یاد ہے بتائیے کہاں یہ مضمون آیا کہ اللہ کے نبی غم نہ کھائے ان کے اوپر، جل جل کے کڑے نہیں. سورت کہاں پہ؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. دوسری ایک اور سورت ہے، سورت شورا میں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، جا کے دیکھیں گے. تیسرا مقام یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی غم نہ کھاؤ، ذرا اپنے بھی دل کا حال لکھیں، ہمارا کیا غم ہے، ہم کس چیز پہ جل رہے ہیں، گھر نہیں بنا بچوں کا. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. کون سا اللہ؟ واللہ الذی ارسل الریاح، وہ ذات جو کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے اسی زمین کو زندہ کر دیتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. کیا یہ صرف زمین کے زندہ ہونے کی بات ہے یا دلوں کی زمین کی بھی بات ہے؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ آپ کو اتنا انرچ کرتے ایمان سے، عمل سے، تقویٰ سے، ورا سے اور علم کے ساتھ، آپ کے اندر سکلز ہوں کہ آپ اس شہر کے مردہ علاقوں کو جا کے آباد کریں. کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے بس دین نہیں، اور پوری دنیا ہی دیکھا جائے تو ہمارا ٹارگیٹ ہے، کیونکہ وہاں لوگ ہیں اللہ کے بندے، چاہے اسلام پہ یا کفر پہ، لیکن ان کو اللہ کی مرضی تک معلوم نہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کسی مردہ جگہ کے لیے لے جائے، وہاں جا کے کام کریں. مجھے لگتا ہے کہ آج یہ سنت بھی ہمارے اندر نہیں رہی کہ ہم لوگوں کے حالت پہ کوڑیں اور جلیں. ہمیں اور باتوں پہ تو دکھ ہوتا ہے، کسی کے پاس کھانا نہ ہو، ہمارے رشتہ دار غریب ہو، ہم یہاں بیٹھ کے جلتے ہیں ان کے لیے، کڑتے ہیں، لیکن ہم اس پہ نہیں کڑتے کہ ان کے بچے نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، اور پتہ نہیں ہمارے اپنے بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اور پتہ نہیں ہم اس پہ بھی کڑتے ہیں کہ نہیں. ہم نے سوچ ہی لیا کہ اس نے صبح اٹھ کے 11 بجے ہی پڑھنی ہے، اب میں اس کو کیا تنگ کروں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا کر دے جو واقعی ہمیں پھر اللہ کے راستوں میں چلاتی رہے. یہ فیول ہے، یہ ایندھن ہے، کڑھا کریں، جلا کریں، اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر، اپنے شوہر، اپنے بچے، ہمسائے، پھر اس کے بعد گلی والے، محلے والے، پھر شہر والے، پھر ملک والے، پھر دنیا والوں کو دیکھیے کہ اللہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اور اللہ ہمیں یہ تڑپ دے. یہی کام کرائے گی، ورنہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے آپ کچھ دن کے بعد. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اچھے کپڑے، لین دین، تحفے، شادیوں کے کھانے، جو شادی کے موقع پہ ہم عزت کی بھیک مانگتے ہیں، واللہ یہ ساری زندگی نہیں مانگتے. کسی طرح ہمیں آج عزت دے دو کہ آج جو شادی ہم نے کر لی اور جو لین دین ہم نے کیا، ایسا کوئی کر نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑو، کیا چیز عزت دے گی؟ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ہائی لائٹ کیجئے، یہاں سے آپ کو ایک بہت بنیادی اصول انشاءاللہ سمجھ آنے والا ہے. کیا؟ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. کیا سمجھیں صرف آیت کو سن کے؟ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، یہ کھڑا رہتا ہے ادھر ہی، उसके पर क्या है? अमल सवाले, ये है अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। बातों से कुछ नहीं होता, असल काम है। मैं आपको 100 बातें यहाँ कह के जाऊं और जाके मेरे अपने अमल इससे भी बुरे हो तो मेरी ये बातें मेरे मुंह पे मारती जाएंगी, और अल्लाह हमें ऐसी रुसवाइयों से बचा के रखे। असल बात यह कि अमल सवाले के साथ जिंदगी में खैर आएगी। रहे वो लोग जो बेहुदा चालबाजियां करते हैं, इनके लिए सख्त अजाब है और इनका मकर खुद की गारत होने वाला है। अल्लाह ने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुम्हारे जोड़े बना दिए, यानी मर्द और औरत। कोई औरत हामिला नहीं होती और ना बच्चा जनती है, मगर ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में होता है। कोई उम्र पाने वाला उम्र नहीं पाता और ना किसी की उम्र में कुछ कमी होती है, मगर ये सब कुछ एक किताब में लिखा होता है। अल्लाह के लिए ये सब बहुत आसान काम है। पानी के दोनों जखीरे यकसा नहीं, यहाँ देखिए कि अब तजाद है, मुख्तलिफ चीजों का तकाबुल किया जा रहा है। एक मीठा है और प्यास बुझाने वाला है, पीने में खुशगवार, और दूसरा सख्त खारी के हलक छील दे। किस चीज की मिसाल है? लोग, इंसान, कुछ इतने मीठे नरम, ऐसे लगता है कि जैसे सारा मुंह जायके से भर गया, और कुछ इतने कड़वे नमकीन कि उनकी एक बात जो है दिल को जला देती है और इंसान सर से पांव तक कांप के रह जाता है। वमिन कुल्ली ताकुलून लहमन तरिया, है पानी मीठा और नमकीन, लेकिन दोनों से निकलता क्या? मगर दोनों से तुम तरोताजा गोश्त हासिल करते हो। कौन सा गोश्त? सी फूड की तरफ इशारा है। मीठे पानी की मछली के नमकीन पानी की मछली, सुना होगा आपने जुमला। क्या पता चला कि खैर हर चीज में होती है। अपने लिए खैर ले लो, तुम मीठे लोगों से भी खैर ले सकते हो, तुम कड़वों से भी ले सकते हो, शर्त क्या कि तुम खैर लेने वाले हो। और पहनने के लिए जीनत का सामान निकालते हो, ये क्या? पानी के अंदर से जो मोती निकलते हैं, पर्ल्स निकलते हैं, और इसी पानी में तुम देखते हो कि कश्तियां इसका सीना चीरती चली जा रही हैं, ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और इसके शुक्रगुजार बनो। वो दिन के अंदर रात और रात के अंदर दिन को पिरोता हुआ ले आता है, जैसे मोती पिरोए जाते हैं ना, सुर्ख डोरी है उसके अंदर आप क्रिस्टल्स पिरोए तो किससे प्यारे लगते हैं, इस तरह रात और दिन का फेर चल रहा है। क्या अंदर सूरज को इसने मुसख्खर कर रखा है? ये सब कुछ एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहा है। वही अल्लाह जिसके ये सारे काम है, तुम्हारा रब है। इसको हाईलाइट करें जरा, कितना प्यार आता है। कभी तो दिल करता है सबको छोड़ छाड़ के बंदा बस अल्लाह के पास बैठ जाए और उससे बातें करे। अल्लाह तू है ये? अल्लाह तू किधर है? तुझे कब देखेंगे? कब तेरे से बात करेंगे? बादशाही इसी की है, इसे छोड़कर जिन दूसरों को तुम पुकारते हो, वो तो एक पिरकाह के भी मालिक नहीं हो सकते, यानी एक धागा नहीं तोड़ सकते। मिन कितमीर, कितमीर क्या होता है? खजूर के अंदर एक छिलका धागा। आप देखें कि खजूर जब सूख जाती है, जब छुहारे की शक्ल में जब आप उसको खोलते हैं तो आपको एक पतली सी छिली दिखती है, और जब रुतुब खजूर होती है गीली तो अंदर गुठली के साथ एक धागा होता है। नकीर, कितमीर, ये सारे लफ्ज उसके हैं। कभी सूखी शक्ल में आता है, कभी गीला होता है। का एक धागे के बराबर कोई नहीं बदल सकता, कोई मालिक नहीं। इनको पुकारो तो वो तुम्हारी दुआएं सुन नहीं सकते, और सुन ले तो इनका तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। और क्यामत के रोज वो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। हकीकत हाल की ऐसी सही खबर तुम्हें इस खबरदार के सिवा कोई दे नहीं सकता। तो फिर इसकी बातें छोड़कर किधर जाओगे? खबरनामे सुनते हो, बीबीसी और फलां और फलां चैनल। अच्छी बात है, वो दुनियावी लिहाज से तुमको आगाह करते हैं चीजों से, लेकिन जो खबरें तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे प्यारों के साथ क्या होगा, जो बातें ये खबीर बताता है और उसकी किताब बताती, कोई नहीं बता सकता। आपको लगता है ये कुरान पाक जब हम पढ़ के उठते हैं, कितनी चीजें इस वक्त हमारे जहन में है जो हमने आज इस रूप में पढ़ी है, तो ये खबरें कहाँ कोई हमें देता अगर हम गाफिल होते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमल की तौफीक अता फरमाए।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين